यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनाचारी जमुना तीरा बनाचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रियाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रियाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। गंगा जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। उदीप मायापुर धाम की जय। चिकित्रपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासा ततो जयमुदिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद आठवां अध्याय भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख में के भीतर विराट रूप का दर्शन श्लोक संख्या 13। आसनवर्णत्रयस्य रुण्यं तम अनुजुगं तनु शुक्लरक्तो तथा पीत इदानी कृष्णतां गता। आसनवर्णत्रयस्य कुण्यन्ते अनुजुगं तनु शुक्लरक्तो तथा पीत इदानी कृष्णतां गता। आसनवर्णत्रयस्य गुणन्ते अनुजुगं तनु शुक्लरक्तो तथा पीत इदानि कृष्णतां गता। बोलिए। कृष्णतां गता दासनवर्णत्रयोस्य पुनन्तं वंशुकं तनु शुक्लरक्त तथा पीत इदानी कृष्णतां गता सनवर्णत्रयस्य ृणंतुगं तनु शुक्लरक्त तथा पीत इदानी कृष्णतां गता आसनवर्णत्रयोस्य सुगम तनु शुक्लरक्तो तथा पीत इदानी कृष्णतां गता माताय सनवर्णत्रयस्य ऋणन्त्वं सुगम तनु शुक्लरक्तो तथा पीत इदानी कृष्णतां गता माता आसनवर्णत्रयोस्य ऋणन्तो अंजुकं तनु शुक्लरक्तो तथा पीता इदानी कृष्णतां गता शब्दार्थ आसन थे वर्णाश्रय तीन रंग ही निस्संदेह अश्य तुम्हारे पुत्र गृह्णतम स्वीकार करते हुए अंजुगम तनु विभिन्न जुगों के अनुसार दिव्य शरीर शुक्ला कभी गोरे रक्त कभी लाल तथा और पीतः कभी पीला इदानी कृष्णतां गता संप्रित उन्होंने श्याम काला रंग धारण किया है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। भूतकाल में उसने तीन विभिन्न रंग गोरे लाल तथा पीला धारण किया और अब वह श्याम काले रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में वह शुक तोते के रंग में भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब ऐसा सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। तात्पर्य, गर्ग मुनि ने कृष्ण की स्थिति कुछ कुछ बतलाते हुए और कुछ कुछ छिपाते हुए संकेत दिया, आपके पुत्र महापुरुष है और वह विभिन्न युगों में अपने शरीर का रंग बदल सकता है। गृहतः शब्द सूचित करता है कि कृष्ण स्वेच्छानुसार चुनाव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव जो चाहे सो कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में विभिन्न युगों में भगवान द्वारा धारण किए जाने वाले रंगों की व्याख्या की गई है। अतएव जब गर्ग मुनि ने यह कहा कि आपका पुत्र ये रंग धारण कर चुका है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह कहा वह भगवान है। कंस के अत्याचार के कारण गर्ग मुनि यह तथ्य प्रकट नहीं करना चाहते कि थे, किंतु परोक्ष रूप में उन्होंने नंद महाराज को बतला दिया कि उनका पुत्र कृष्ण वास्तव में भगवान है। शिल जीव गोस्वामी के क्रम संदर्भ नामक पुस्तक में इस श्लोक का तात्पर्य दिया है। प्रत्येक युग में भगवान या तो श्वेत शुक्ल या लाल पीले या पीले रंग के रंग में प्रकट होते हैं, किंतु यह इस बार वे अपने मूल काले श्याम रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। और जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की है, उन्होंने नारायण की शक्ति प्रदर्शित की, क्योंकि इस रूप में भगवान पूर्ण रूपेण स्वयं का प्रदर्शन करते हैं, अतएव उनका नाम कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक है। वस्तुतः कृष्ण सारे अवतारों के स्तोत्र है, अतएव विभिन्न अवतारों के भिन्न 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 स्वरूप कृष्ण में निहित रहते हैं। जब कृष्ण अवतारी होते हैं तो अन्य अवतारों के सारे गुण उनमें पहले से वर्तमान रहता है। अन्य अवतार कृष्ण के आंशिक रूप स्वरूप होते हैं, किंतु कृष्ण स्वयं परम पुरुष के पूर्ण अवतार है। यह समझ लेना चाहिए कि परम पुरुष चाहे शुक्ल रूप में प्रकट हो, चाहे रक्त या पीत रूप में वे रहते वही पुरुष है। जब वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो वे विभिन्न रंग धारण करते हैं। जिस तरह सूर्य प्रकाश के साथ रंग होते हैं, कभी कभी ये रंग पृथक पृथक प्रकट होते हैं। अन्यथा सूर्य प्रकाश चमकीले प्रकाश जैसा दिखता है। कृष्ण अवतार में विभिन्न अवतार जथा मन्वंतर अवतार, लीला अवतार तथा दस अवतार सम्मिलित रहते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो अन्य सारे अवतार उनके साथ साथ प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवतम प्रथम अध्याय तीसरा श्लोक 26 नंबर श्लोक में वर्णन हुआ है, अवतार अशख्य हरे सत्व निर्धजिता द्विजः जथा विदासिनम कुल्या सरसः स्युसस्रसः। विभिन्न अवतार सतत प्रवाहित जल की तरह लगता सॉरी लगातार प्रकट होते रहते हैं, जिस तरह प्रभावित जल में लहरें की संख्या की गणना नहीं की जा सकती, उसी तरह अवतारों की कोई सीमा नहीं है और कृष्ण सभी अवतारों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे समस्त अवतारों के स्तोत्र है। कृष्ण अंशी है और अन्य अंश है। सारे जीव जिसमें हम सभी सम्मिलित है अंश है। ममेवांसो जीवलोको जीवभूत सनातन, ये अंश विभिन्न माप के हैं। मनुष्य अंश है, नित्य नित्यानम चेतन चेतनानम। कृष्ण सारे जीवों के पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और जब कृष्ण विद्यमान रहते हैं तो सारे अवतार उनमें निहित रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में प्रत्येक युग के अवतारों का क्रमानुसार वर्णन हुआ है। भगवान का कथन है, कृते शुक्ल चतुर्भुः तृतया रक्तवर्णस्य द्वापरे भगवत श्यामं तथा कृष्णवर्ण तिशा कृष्ण कृष्णम। हम देखते हैं कि कलियुग में भगवान पीतवर्ण गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए, यद्यपि भगवान में उन्हें कृष्णवर्ण का भागवतम में उन्हें कृष्णवर्ण का कहा गया है। इस सब कथाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए यह समझना चाहिए कि यद्यपि कुछ युग में कुछ रंग का प्राधान्य रहता है, किंतु प्रत्येक युग में जब जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे रंग उपस्थित रहते हैं। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण या काले रंग में रंग से रहित प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें साक्षात कृष्ण माना जाता है। इत्यादि इदानी कृष्णताम गतः विभिन्न वर्ण में प्रकट होने वाले यह वही यदि कृष्ण अब प्रकट हुआ है। आसन शब्द बतलाता है कि वे सदैव विद्यमान रहते हैं। जब भी भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होते हैं तो वे कृष्ण वर्ण के रूप रहते हैं। यद्यपि वे विभिन्न रंगों में प्रकट होते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु छन्न है, अर्थात वे कृष्ण होकर भी पीले रंग से आवृत रहते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव इस निष्कर्ष को मानते हैं कि यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु पीत रंग में प्रकट हुए, किंतु वे कृष्ण है। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षद जज्ञे संकीर्तन प्राय जजन्ति अश्वमेधसा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथं इदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानितं स नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादि पाश्चात देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरी यत्कृपातवहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव और उपस्थित सभी वैष्णव का आशीर्वाद चाहता हूँ, जिससे कि मैं इस श्लोक का महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम में, तो इसके बारे में कुछ बोलने के लिए प्रयास करूँ। तो श्रीमद् भागवतम की दसम स्कंद के आठवां अध्याय है। तो जैसे कि हम भगवान की पहले अध्याय में सातवें अध्याय में वर्णन सुने, किस प्रकार उन्होंने तृणावत आदि राक्षसों का वध किया, तो जैसे कि पूर्व कक्षा में बताया था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इन कथाओं का वर्णन करते कर रहे थे, तो राक्षसों की वध जो है जैसे शकटासुर भंजन लीला भगवान की तीसरे महीने में उन्होंने शकट भंजन लीला किया था, लेकिन उन्होंने फिर से तृणावत वध का लीला का वर्णन किया जबकि भगवान वो एक साल के हो गए थे तृणाव्रत का वध किया। तो आचार्य लोग कहते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इन लीलाओं में आनंद पा रहे थे राक्षसों की लीलाओं में, तो जिसके कारण उन्होंने जो तीन महीने के बाद के जो लीला हैं वो वर्णन ना करके सीधे वो तृणाव्रत जो भगवान जब एक साल के उस लीला का वर्णन कर दिए। तो इसलिए सप्तम अध्याय में हमें जो है तृणाव्रत की जो बध है वो लीला प्राप्त होता है। तो इसलिए अष्टम अध्याय में फिर से सुखदेव गोस्वामी ने जो लीलाओं को छोड़ दिए थे उसको वो वर्णन करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अष्टमे नाम संस्कारणम करणम रिंगनम गाव्य शोषणम मृदुभक्षणम विश्वरूपम प्रदर्शनम च निगद्धते। तो कहते हैं कि इस अष्टम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने का नामकरण संस्कार रिंगन यानी घुटने पर चलना और दधि मक्खन आदि चोरी मिट्टी खाना और विश्वरूप दर्शन इन सभी लीलाओं का इस अध्याय में वर्णन हुआ है। तो भगवान की जैसे एक साल के अंदर जो है भगवान घुटने पर चलते हैं, तो वो लीलाएं जो छोड़ दिए थे उनको फिर भगवान सुखदेव गोस्वामी ने फिर से इस अष्टम अध्याय में कहे। तो मूलतः इस अध्याय में आज के श्लोक में जो है नामकरण संस्कार के बारे में है, किस प्रकार भगवान की नामकरण के लिए स्वयं गर्गाचार्य आते हैं और जहाँ से मथुरा से वसुदेव की प्रेरणा से आते हैं यहाँ भगवान की नामकरण संस्कार के लिए आते हैं। तो बलराम जी का किस प्रकार नामकरण के इस श्लोकों से पूर्व वर्णन हुआ, तो आज जो है इस श्लोक में यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जो गर्गाचार्य कहते हैं कि आसन वर्ण त्रयस्य हृण्यतम अनुजुगम तनु शुक्ल तो तथा पीत इदानी कृष्णताम गता। तो यहाँ गर्गाचार्य कहते हैं कि ये जो आपके पुत्र है ये पूर्व से अनेक रंगों वाले रूपों में अलग अलग युगों में वो प्रकट हो चुके हैं, तो अभी जो है यहाँ लिखते हैं आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, भूतकाल में उसने तीन विभिन्न रंग गौर लाल तथा पीला धारण किया और अब वह श्याम काले रंग के उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में वह शुक्र तोता के रंग में भगवान श्री रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब वे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। तो इस अनुवाद से देख सकते हैं कि कृष्ण तो ये युग के अनुसार जो कहा गया है कि भगवान जो जिस युग में आए द्वापर में उनका जो रंग था श्याम वर्ण का था, लेकिन श्याम वर्ण जो है कहते हैं ये काला वर्ण जो है कलयुग का वर्ण है। भगवान जब कलयुग में आते हैं ये रंग धारण करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये प्रायतः आचार्य लोग जैसे कि आनंद वृंदावन चंपू में कभी लिखते हैं आचार्य कि भगवान हालांकि ये जो जुगावतार है इसमें सिक्वेंस वाइज आते हैं, लेकिन इस कलयुग में खास करके भगवान का युग भी परिवर्तन हो गया। जैसे सत्य के बाद द्वापर आना चाहिए लेकिन त्रेता आ गया और उसके बाद द्वापर आया, और जैसे भगवान के रंग में भी भेद हो गया। द्वापर युग में भगवान कैसे होते हैं ना, लाल हो, तो यहाँ लिखे अन्य द्वापर युग में वह तोते के रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है भगवान श्याम वर्ण के है। तो इससे पता चलता है भगवान जब कृष्ण आते हैं उसके बाद ही गौरचंद्र आते हैं, तो इनका दोनों का कलर जो है अदल बदल हो जाता है। हर युग में जैसे चैतन्य भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा के कहते हैं कि ब्रह्मा रा एक दिन है 14 मन्वंतर 14 अवतार तहा करेन ईश्वर 14 एक दिन मासे 420 ब्रह्मा रा वर्षरे 540। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मन्वंतर होता है और 14 मन्वंतर तहा करे न ईश्वर 14 अवतार तहा करे न ईश्वर। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मन्वंतर होता है और 14 अवतार होता है। इसे जैसे भगवान की जो अवतार है मन्वंतर अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, ऐसे अनेक अवतार है, लेकिन यहाँ जो कहा गया कि जो मन्वंतर अवतार की यहाँ वर्णन हो रहा है, तो वो कह रहे कि 14 मन्वंतर में वो दिन में आते हैं ब्रह्मा के और उसी दिन में भगवान आते हैं। और इसी प्रकार कहते हैं कि 14 एक दिन मासे 420 तो एक महीने में 420 अवतार भगवान के आते हैं। और इसी प्रकार वो कहते हैं ब्रह्मार वर्षरे 540 कि ब्रह्मा के एक साल में 5040 अवतार होते हैं। तो इसी प्रकार ये देखने को मिलता है इतने ब्रह्मा के जो अवतार है उनके जीवन काल में भगवान के अनेक अवतार होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो अलग 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 जो चतुर्युग है ब्रह्मा जी के दिन में उन चतुर्युग में जब 28 चतुर्युगे द्वापर से कि 28वें चतुर्युग की द्वापर में अंत में कृष्ण आते हैं, तो उसी द्वापर के बाद जो कली आता है उस कली में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो है, स्वयं जो कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, क्योंकि कृष्ण जब आते हैं यहाँ यहाँ अनेक प्रकार के उन्होंने शिक्षा दिए, उपदेश दिए, जैसे भगवत गीता दिए, तो हम ये विस्तार से हमें चैतन्य चरितामृत में ये सब वर्णन मिलता है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का आने के समय जब होता है, या कृष्ण का जब आने का समय होता है, कि सभी अवतार उनमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन करते हैं कि हालांकि भगवान अलग अलग रंगों में आते हैं, लेकिन ये रंग का कोई प्राधान्यता नहीं है, लेकिन भगवान किसी भी रंग में आए वो भगवान ही रहते हैं, या किसी भी रूप में रहे उनका भगवत्ता कभी समाप्त नहीं होता है। तो भगवान एक छोटे से हमारे हृदय में, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में एक प्रदेश मात्र, प्रदेश का वो वर्णन करते कहते हमारे वृद्ध उंगली से तर्जनी उंगली का जो माप होता है वो साइज में हमारे अंदर भी रहते हैं भगवान, तो फिर भी उनका शक्ति वही रहता है। तो भगवान किसी भी रूप में वो रहे, भगवान की वो सत्ता कभी बदलता नहीं है। तो भगवान की भगवत्ता हर समय हर रूप में बना रहता है। तो इन श्लोकों में पता चलता है कि भगवान हर युग में जो है अलग अलग वर्ण लेते हैं और वो अवतार लेके प्रकट होते हैं, लेकिन आचार्य लोग कहते हैं, अलग अलग शास्त्रों में हमें प्रमाण मिलता है कि भगवान हर युग में स्वयं नहीं आते हैं, भगवान के अवतार आते हैं। लेकिन इस कलयुग जो 28वें मन्वंतर की कलयुग में भगवान कैसे आए, सॉरी 28वें चतुर्युग में भगवान स्वयं आते हैं, कृष्ण स्वयं आते हैं, जो कि सभी अवतार का उस मूल है, वो अवतारी है। तो इसलिए इससे हम भक्त लोग जानते हैं, क्योंकि हम अनेक बात लेक्चर सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें विश्वास है कि भगवान सब अलग अलग में अवतार आते हैं, या कृष्ण पहले भी आए हैं, या कृष्ण पहले से हैं। लेकिन बाहर के लोगों में ये विश्वास नहीं है। बाहर के लोग सोचते हैं विष्णु से कृष्ण आए हैं, तो वो सोचते हैं कृष्ण अवतार है, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि कृष्ण अवतारी है। तो श्रीमद् भागवतम अनेक शास्त्र बताता है, जैसे श्रीमद् भागवत कहता है, एक चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मूढ़यन्ति जुगे जुगे। हे केवल कृष्ण स्वयं भगवान है, जैसे ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि कृष्ण जो है गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, जो गोविंद है वो आदि पुरुष है। तो इसलिए जब हम बाहर के लोगों को हम कृष्ण के बारे में बताते हैं, वो कभी कभी युक्ति करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें शास्त्र वर्णन है, शास्त्र में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ये भगवान हर युग में उनके अवतार आते हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण जो है अवतारी है, कृष्ण अवतार नहीं है। इसलिए हम शास्त्र के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और देखा जाता है शास्त्र में जिस प्रकार इस कलयुग में हमारा युग धर्म है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कलयुग का ये युग धर्म है, तो इसी प्रकार हर युग में अलग अलग मंत्र है। तो सत्ययुग में अलग मंत्र है, तो कहते हैं कि नारायणम परवेदा नारायणम परम मुख नारायणम परम मुक्ति नारायणम पराम गति, ये सत्ययुग का मंत्र है। लेकिन द्वापर युग में कहते हैं क्या मंत्र है, कि हरे मुरारे मधुकैटवारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे જગ્ગેશ નારાયણમ કૃષ્ણ વિષ્ણુ નિરાશ્રયામાં જગદીશ રખ્ય. કે દ્વાપર યુગ મેં તો કૃષ્ણ તો દ્વાપર કે અંત મેં આયે થે, તો એ મંત્ર તો દ્વાપર સે પહેલ દ્વાપર સે હી થા શુરુ સે હી. તો હમ યે લોગો કે સામને યે જુક્તિ દે સકતે હૈ કે અગર કૃષ્ણ અભી આયે દ્વાપર મેં તો પહેલે સે કૈસે કૃષ્ણ કા નામ હૈ કે નારાયણમ કૃષ્ણ વિષ્ણુ યે નામ આયા, તો યે દ્વાપર યુગ કા મંત્ર હૈ. તો ઇસી પ્રકાર ત્રેતયા મેં ભી કૃષ્ણ નામ આતા હૈ, રામ નારાયણ અનંત મુકુંદ મધુસૂદનમ કૃષ્ણ કેશવ કંસારે હરે વૈકુંઠ વામન. કે વહા ભી ત્રેતાયુગ કે મંત્ર મેં ભી કૃષ્ણ આતે હૈ. અગર કૃષ્ણ અભી અવતાર હુએ હૈ, અગર વો વિષ્ણુ કે વિષ્ણુ સે આયે હૈ, તો કૃષ્ણ નામ અભી કૈસા હૈ. તો ઇસ પ્રકાર જૈસે હમારે આચાર્ય લોગ કહેતે હૈ, જિસ પ્રકાર કૃષ્ણ નિત્ય હૈ ઉસી પ્રકારે નામ ભી નિત્ય હૈ. ઇસલિયે શાસ્ત્ર કહેતા હૈ કૃષ્ણ નામ કૃષ્ણ હોઈતે સર્વદા અભેદ, જે કૃષ્ણ સેઈ નામ નહીં તો પ્રભેદ, શ્રીનામ સ્મરીલે રૂપ આઈસે સને સને, નામ રૂપ અભિન્ન નાચે નાના રૂપ. તો કૃષ્ણ કૃષ્ણ નામ ઓર કૃષ્ણ અલગ નહીં હૈ, કૃષ્ણ નામ કૃષ્ણ હોય તે સર્વદા અભેદ, યે અલગ નહીં હૈ, અભેદ હૈ, ભેદ નહીં હૈ. જે કૃષ્ણ સે નામ, જો કૃષ્ણ હૈ વહી નામ હૈ, નહીં તો પ્રભેદ, ઇસમે કોઈ ભેદ નહીં. ઓર ક્યા કરે કે શ્રીનામ સ્મરીલે રૂપ આઈસે સને સને, કોઈ અગર ભગવાન કૃષ્ણ કા નામ લેતા હૈ તો સામાન્ય દૃષ્ટિ સામ દેખે, કોઈ ગૃહસ્થ લોગ જબ આપને સંતાન કો નામ લેતે હૈ, જૈસે કભી કભી લોગ હોતા હૈ, આપ દેખે હોંગે હમારે મંદિર મેં લોગ આતે હૈ, આતે હૈ હલવા બટા જાતા હૈ, કભી કભી હલવા લેને કે લિયે વો કાગજ યા રૂમાલ નિકાલતે દે દો, કિસકે લિયે બચ્ચે કે લિયે, હા તબ બચ્ચે કા નામ લેતે હૈ, ઉનકો યાદ આતા હૈ બચ્ચે કા, ઉનકો બચ્ચે કા રૂપ ભી આતા હૈ. તો કોઈ બહુ દિન સે બચ્ચે સે દૂર હૈ યા પત્ની સે દૂર હૈ, તો જો તદીય વસ્તુ હૈ ઉનકો યાદ કરને સે ઉસકા ચહેરા ભી સામને આતા હૈ, ઉનકે વસ્તુ કો દેખને સે ઉનકા ચહેરા આ જાતા હૈ. ઇસી પ્રકાર આચાર્ય લોગ કહેતે હૈ કે ઇસી પ્રકાર જબ કોઈ કૃષ્ણ કા નામ લેતા હૈ તો કૃષ્ણ કા રૂપ આતા હૈ. તો નામ રૂપ ભિન્ન નાય, એ નામ રૂપ એ ભિન્ન નહીં, એ કૃષ્ણ કી લીલા આદિ કર્મ ક્રિયાએ ભી નામ સે અલગ નહીં. તો ઇસકે પ્રમાણ મિલતા હૈ કે એક બાર કી ઘટના હૈ, શિલ સનાતન ગોસ્વામી જબ રૂપ ગોસ્વામી ને ઉનકો બહુત સે કિતાબ લિખતે થે, તો ઉનકે પાસ આતે થે, ઉનકો દિખાતે થે કે એ ઠીક હૈ કે નહીં, હા તો ઉન્હોને કુછ કિતાબ લેકે આયે થે જિસમે વો રાધા રાણી કે ગોપિયાઓ કે લીલાઓ કે વર્ણન કિયા થા. તો રૂપ ગોસ્વામી ને વર્ણન કરતે હૈ વો લિખા થા જો રાધા રાણી ઓર ગોપિકાઓ કી જો ચોટી હૈ વો ચોટી હૈ વો દેખને કે લિયે સાપ કે સમાન હૈ. તો સનાતન ગોસ્વામી કો થોડા અચ્છા નહીં લગા કે સાપ કે દૃષ્ટાંત કૈસે દિયે, હા ઓર કુછ દૃષ્ટાંત દે સકતે થે. તો ઉન્હોને કુછ બોલે નહીં રૂપ ગોસ્વામી કો, લેકિન વો ચલે ગયે ફિર રાધાકુંડ મેં જાકે અપના ભજન કરને લગે. તો ભજન કરતે હુએ વો ધ્યાન સે જબ સમાધિ મેં પહોંચે તો વો દેખ રહે હૈ રાધાકુંડ કે અંદર બહુત સે ગોપિકાએ સુંદર સુંદર ગોપિકાએ વાલાએ વો ખેલ રહે હૈ કુંડ કુંડ મેં જલ ક્રીડા કર રહે હૈ, ઓર દેખ રહે હૈ કે ઉનકે પીછે જો હૈ ચોટી મેં એક એક સાપ લટક રહે, હા તો યે દેખ કર વો ચકિત હોકર તુરંત ચિલ્લાને લગે, હે ગોપી હે વાલાએ આપકે સર પે સાપ હૈ સાપ હૈ સાપ હૈ ચિલ્લા રહે. ઇતને મેં ઉનકા ફિર ધ્યાન ભગ્ન હોતા હૈ. તો ધ્યાન જૈસે ભગ્ન હોતા હૈ તો સમજ જાતે હૈ કે જો રૂપ ગોસ્વામી ને લિખા હૈ વો સહી હૈ. તો ઇસે ઇન લીલાઓ મેં એસા અનેક લીલાએ હૈ જિસસે પતા ચલતા હૈ કે ભગવાન કી સ્મરણ કરને સે क्या आता है? रूप आदि जो भगवान के रूप गुण लीलाएं वो दर्शन हो सकता है। तो इसलिए हमें, हम बहुत बार भक्तों के मुख से, अनेक आचार्यों के मुख से सुनते हैं कि नाम ही साध्य है और नाम ही साधन है, हमें नाम के द्वारा ही नाम को प्राप्त करना है। तो नाम और नामी में भिन्न नहीं है। तो कृष्ण तो जिस प्रकार वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो कलयुग में हमारे लिए कृष्ण किस प्रकार है? नाम के रूप में। इसलिए स्वयं महाप्रभु कृष्ण स्वयं आए नाम देने के लिए। तो कलयुग में श्रेष्ठ साधन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई अगर कलयुग में नाम लेगा, शुद्ध नाम अगर लेगा, तो क्या होगा? उसको रूप गुण लीला भगवान के दर्शन होगा। तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि नाभवित ग्राहन इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं में वसुरत पया। कि कोई अपने भौतिक इंद्रिय के द्वारा भगवान के नाम आदि रूप गुणा लीलाओं को नहीं समझ सकता है, लेकिन इसी भौतिक इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, नाम जप आदि सेवा में, तो क्या होता है? वही स्वयं में वसुरतया, वो एक दिन हमको स्वयं को स्फुरित करता है। इसी प्रकार शास्त्र के प्रमाण के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कृष्ण जो है वो नित्य है और उनकी नाम भी नित्य है। तो नाम के माध्यम से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो कृष्ण की अवतार के बारे में बताया गया है इस श्लोकों में कि आसन वर्ण त्रयस्य गृह्णति जुगम तनुम शुक्ल रक्त तथा पीत इदानी कृष्णताम गताम, कि इस युग में भगवान जो श्याम वर्ण के आए हैं, तो इससे पूर्व युगों का भी गर्गाचार्य वर्णन करके कहते हैं कि यही जो पुत्र है आपका पूर्व युगों में भी अवतार ले चुके हैं। तो भगवान कृष्ण हर युग में नहीं आते हैं, इस जो इसे इसलिए इस युग को धन्य कली कहा गया है, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं है, उन्होंने स्वयं कृष्ण आए। क्योंकि कृष्ण जब द्वापर में यहाँ उपदेश देकर चले गए और जाने के बाद वो गोलोक में सोचते हैं कि इतना उपदेश सब कुछ दे के आया तो कौन करेगा, कैसे करेंगे लोग। तो इसलिए महाकृष्ण गोलक वृंदावन में सोचे कि अभी मैं खुद जाऊंगा। इसलिए कृष्ण क्या सोचे ना, कहते हैं कि अपनी करीबु भक्त भाव अंगीकार, अपनी आचरी भक्ति सिखाबु सबार, अपनी ना कैले धर्म सिखाते न जाए, यही तो संबंध गीता भागवत गाय। हे कहे कि मैं अभी स्वयं जाऊंगा भक्त भाव को लेकर। ऐसे तो हम जब चैतन्य चरितामृत ग्रंथ आदि पढ़ते हैं तो वहाँ भगवान की, चैतन्य महाप्रभु के आने की जो कारण बताया गया है, तो ये सब तो गौण कारण है, लेकिन मुख्य कारण कुछ और था। तो फिर भी भगवान कैसे भी आए, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान आए इस युग में। तो इस युग में आने के कारण हम को ये महामंत्र जो मिला, और जो कि सब युग में नहीं दिए थे। कि कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण के जो खजाने में सबसे मूल्यवान धन जो है ये कृष्ण नाम है। तो वो गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, वो वस्तु का हमें देने आए महाप्रभु। तो इसलिए यहाँ जो अनेक शास्त्र में हम देखते हैं कि कृष्ण के विषय में बहुत से बातें मिलते हैं हमें, कृष्ण किस प्रकार अलग अलग अवतार लेते हैं उसका वर्णन मिलते हैं। कहीं ऐसा हमें शास्त्र में विष्णु से कृष्ण आए ऐसे कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पता चलता है कि कृष्ण जो है इस द्वापर में आए, और ठीक इस द्वापर के बाद जो कली आया उस कली में स्वयं कृष्ण फिर चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो इसलिए कहते हैं कि अनंत कृष्णेर नाम अनंत महिमा नारद आदि सुख देव दीते नारे सीमा, कि कृष्ण का नाम अनंत है। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण का अवतार भी अनंत है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते रामादि मूर्ति शुक्लादि नियमेन त्रिष्टम नाना अवतार मकरोद भुवने सुकिंतु कृष्ण स्वयं समभव परम पुनमाय गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि रामादि मूर्ति जितने भी है भगवान के अवतार है, लेकिन कृष्ण जो है कृष्ण स्वयं समभव परम पुमाय, कि कृष्ण स्वयं भगवान है इसलिए वो आदि पुरुष है। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि अनंत कृष्णेर नाम अनंत महिमा नारद आदि सुखदेव दिते नारे सीमा, कि नारद आदि ऋषिगण भी सुखदेव जी भी इनकी नामों के गुणगान करके समक्ष नहीं है। हे नाम की जिस प्रकार कृष्ण की महिमा अनंत है, कृष्ण का रूप अनंत है, उसी प्रकार कई गुना कृष्ण की नाम की महिमा है। इसलिए कलयुग में हमारे लिए दो अवतार है भगवान की। हाँ, जो तो एक अवतार चले गए चैतन्य महाप्रभु, ऐसे नहीं कहा जा सकते चले गए, अभी भी है किसी ना किसी रूप में, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। लेकिन हमारे पास भगवान की कृपा से भगवत नाम है। हाँ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते कली काले जगत निस्तार, नाम बिना कली काले नहीं आओ धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, ये सभी शास्त्रों का मर्म है। तो अगर कोई कृष्ण को अभी भी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सरल रास्ता है कृष्ण नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताएं। अच्छा, जैसे अभी कलयुग चल रहा, तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु महामंत्र दिए, और जैसे और देखते हैं कि संत तुकाराम महाराज को भी वो मंत्र दिए थे रामकृष्ण हरि, तो ये मंत्र है जैसे कलयुग का कौन सा मंत्र है? महामंत्र भी है उधर भी दिए थे, तो ये मंत्र जो कलयुग का महामंत्र है और उधर भी मंत्र दिए थे, तो ऐसा दोनों अलग अलग और अलग अलग एक ही, जैसे महामंत्र जो करता है तो गोलोक वृंदावन जाएगा, और वो मंत्र जो राम कृष्ण हरि है ये कलयुग का, और भी मंत्र होते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
तो नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एकादशी तव कृपा भगवन् मातु दुर्दैव समीहा जनिना अनुराग। तो चाहे कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र है, लेकिन महाप्रभु तुकाराम महाराज को थोड़ा भिन्न मंत्र दिए, लेकिन फिर भी उसमें यही शब्द है राम कृष्ण हरि, इसमें भी वही है। तो महाप्रभु ने कृपा करके जो मंत्र दिए वो उसमें बल दिए हैं वो, तो उनके लिए वो मंत्र था। तो हमारे लिए अगर महाप्रभु देते स्वयं आके अलग कुछ मंत्र तो हमारे लिए वो होता। तो हम सबके लिए जो मंत्र दिया है हरे कृष्ण महामंत्र, और यही महाप्रभु दिए है, तो इसको हमको लेना चाहिए। अगर महाप्रभु आपको अलग से आके देंगे कुछ मंत्र उसको ले सकते हैं।
नहीं नहीं,
तो नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम में सभी नाम में वही शक्ति है।
अब जैसे ओम मंत्र को जप करते, महाराष्ट्र में बहुत लोग देखते हैं तो मंत्र जप करते हैं रामकृष्ण हरि, तो अगर वो बोले कि आप महामंत्र जप कीजिए, बोले नहीं तो हमें ऑलरेडी मैं हो चुका हूँ रामकृष्ण हरि से, तो उसको फिर कैसे बताएंगे कि आप ये जप कीजिए, इससे श्रेष्ठ मंत्र है ये, भी गोलोक वृंदावन ले जाएगा वो, वैकुंठ तक ले जाएगा, तो उसको कैसे बताएंगे?
तो शास्त्र के माध्यम से हम बता सकते हैं कि शास्त्र में ऐसे वर्णन है कि ये कलयुग का बीज मंत्र है, उसको लेना चाहिए। लेकिन जो तुकाराम महाराज के संप्रदाय में जुड़े हैं तो वो लोग वही मंत्र लेते हैं, तो प्रयास करना चाहिए उनको कन्विंस करने के लिए। लेकिन फिर भी उनका एक परंपरा में वो महाप्रभु से ही आया है, तो उनके गुरु का कर्तव्य है शिष्यों का उद्धार करना, तो वो गुरु परंपरा में उनका जुड़े हैं, तो उनका दायित्व बन जाता है तुकाराम महाराज के उनके अनुगत्य में है। तो मेरा ये सोचना है कि ये तुकाराम महाराज उनके लिए उनका लिए जो शेष करे वो करेंगे, लेकिन हमारे लिए तो हमारा संप्रदाय का मंत्र है, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि ये ऐसा है, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो कहते हैं ना, आप बकरी को पानी तक लेके जा सकते हो लेकिन ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते, तो आप समझा सकते हो उनको ऐसा है करके, लेकिन उनको आपका महामंत्र ग्रहण करना ना ग्रहण करने का उनके ऊपर मर्जी है।
और क्या बोलते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले कि गोलोक से वृंदावन मंत्र लेकर आए, तो उन वो दीक्षा दिए महाप्रभु, तो वो भी तो जा सकते हैं उधर गोलोक वृंदावन वो मंत्र से जप करके, चैतन्य महाप्रभु लेकिन वहाँ से आए मंत्र है और सारे शक्ति उसमें दिए हैं, तो वो भी कृष्ण का नाम ले रहा है ना राम
तो वो
कृष्ण।
भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसको लेके जाए किसको यहाँ छोड़े।
अच्छा एक बात और है कि जैसे द्वापर युग में भगवान कैसा रूप, कौन सा कलर लिए थे द्वापर युग?
इस
हाँ
द्वापर में या पहले द्वापर में?
अभी ये फिलहाल पीछे अभी अभी
श्याम वर्ण।
इसमें श्याम बताया।
हाँ
अच्छा श्याम, तो द्वापर युग में बहुत से अवतार हुए ना कल द्वापर युग में, जैसे कलयुग में भी बुद्ध भी अवतार हो गए, चैतन्य महाप्रभु, फिर कल्कि अवतार, ते कलर भी अलग अलग है ना कलयुग का भी
तो
कलयुग।
यहाँ यहाँ जो वर्णन है कि जो चार युग का जो कलर का वर्णन किया गया, इसमें तो कलयुग में भगवान काले वर्ण में आएंगे बताया गया है, लेकिन इस युग में भगवान अलग कलर लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कलर का कोई देखना जरूरी नहीं है, भगवान किसी भी कलर में आए वो भगवान रहते हैं, तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान आए वो विचार करिए कौन सा कलर में आए जिस रोज।
हरे कृष्ण, इनका जो पहला प्रश्न था उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ?
जी ब्रोज।
हरे कृष्ण, तो अथर्ववेद के चैतन्य उपनिषद से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एक बार पिपरलाल ऋषि यज्ञ के संविदा लेके आते हैं और ब्रह्मा जी के सामने रखते हैं और उनको प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग युगों का युग धर्म क्या है और कलयुग का खास करके बताइए। तो तब ब्रह्मा जी और उनका अवतार भी बताइए, तो ब्रह्मा जी सब उनको बताते हैं कैसे कलयुग में गोविंदो द्विभुजो गौरह जानवी तेरे नवद्वीपे गोलोक नामानि आख्यानि, कि गोलोक धाम ही गंगा किनारे नवद्वीप के रूप में आने वाला है और वही गोविंद गौरांग के रूप में आने वाले हैं और वो हरि नाम का प्रचार करने वाले। तो पिपलाद ऋषि पूछते हैं कौन सा मंत्र, तो बोलते राम कृष्ण हरि, हरिर इति राम इति कृष्ण इति, ये तीन बीज मंत्रों का वो प्रचार करने वाले। तो मूल अथर्ववेद ब्रह्मा जी के चर्चा सत्र में इसका ही जिक्र किया गया है कि चैतन्य महापुरुष इसका प्रचार करेंगे करके भक्तिनाथ ठाकुर कोट करते। और ये बीज शब्द है महामंत्र के, राम कृष्ण हरि। दूसरी बात है, जहाँ तक तुकाराम महाराज को उन्होंने जो दीक्षा दी थी हरे कृष्ण महामंत्र के, ये हमें तुकाराम महाराज का जो ग्रंथ है अभंग उसमें पाया जाता है। तो तुकाराम महाराज चैतन्य महाप्रभु के 100 साल बाद आए थे, उनका प्रत्यक्ष मिलाप नहीं हुआ था, उनको स्वप्न में दीक्षा दी गई थी और 100 साल बाद चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए थे 1511 के आसपास, 11 या 12 में, और तुकाराम महाराज का जन्म ही 1608 का है, तो इसीलिए 100 साल का डिफरेंस है। तो तुकाराम महाराज को उन्होंने स्वप्न में दीक्षा दी थी और स्वयं तुकाराम महाराज कहते हैं कि बाबा जी चैतन्य राघव चैतन्य जप दिला रामकृष्ण हरि सांगितले खुल माली के छे, वो कहते हैं कि उनका वो स्वयं राघव चैतन्य और केशव चैतन्य चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने मुझे जप दिया रामकृष्ण हरि का। तो इसका महाराष्ट्र के जो संत है बड़े बड़े, जैसे बहुत बड़े भक्त हैं, वो कहते हैं कि तुकाराम महाराज ये अपनी गाथा में कविता के रूप में वर्णन कर रहे हैं रामकृष्ण हरि, इसका मतलब पूरा महामंत्र भी दिया हुआ होता है, हो सकता है। आप देखेंगे चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत ये और चैतन्य मंगल भी, ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित अधिकृत बायोग्राफी है, जीवन चरित्र है। इसमें कहीं पे भी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, पूरा महामंत्र नहीं है चैतन्य चरितामृत में। हरि हरि कैला, कृष्ण कृष्ण कैला, कृष्ण कीर्तन कैला। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अवल बावल गीता गौरांग नागरी ये जो अपसंप्रदाय 12 आए बाद में, इन्होंने नितय गौर राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम अपना अपना चालू कर दिया, अपना अपना चालू कर दिया। इसीलिए भक्तिनो ठाकुर को बहुत मुश्किल गया चैतन्य चरितामृत की एक कॉपी ढूंढने के लिए, और जब उनको मिले तो उन्होंने अधिकृत अमृत प्रवाह भाष्य लिखा, फिर सरस्वती ठाकुर ने अनुभाष्य लिखा और श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तिवेदांत तात्पर्य लिखा। इसमें वो पूरा महामंत्र देते, वो समझ गए कि कविराज गोस्वामी वृंदावनदास ठाकुर ने शॉर्टकट में लिखा महामंत्र, इसका दुष्परिणाम ये अवला बावला बाकी लोगों ने शॉर्टकट में मंत्र लिखा। इसलिए प्रभुपाद आप परपट में देखोगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, इसीलिए करते प्रभुपाद, क्योंकि आगे जाके और कोई कुबुद्धि वाले लोग ना आए, क्योंकि कविता के रूप में शॉर्टकट के रूप में हरिनाम देते हैं लोग आचार्यगण, लेकिन उसको समझने वाले बुद्धि कलुषित होने के कारण अपना ही मत उसमें डाल देते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो महाराष्ट्र के आचार्य वो कहते हैं कि तुकाराम महाराज ने रामकृष्ण हरि का मतलब पूरा महामंत्र लिया हो सकता, क्योंकि हरे कृष्ण नाम गौरव करीला प्रचार, महाप्रभु तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन किए हैं, उनको भी वही दिए, लेकिन कविता के रूप में अपने अभंग में लिखते समय वो लिरिक्स क्या बोलते हैं उसको, यमक जुड़ाने के लिए वो रामकृष्ण हरि लिखते हैं उधर। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि महाप्रभु अलग मंत्र का जप देंगे या अलग ये करेंगे जब, और कविराज गोस्वामी खुद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, दक्षिण भारत की यात्रा में वो इतनी जगह गए कि मैं लिख नहीं सकता, इसलिए पहले से माफी मांगते हो महाप्रभु की और वाचकों के भी। और एक जगह एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति है जो महाराष्ट्र भूषण है PhD जैसे, उससे बड़े वो कहते हैं अभी 100 साल के, उनको मिला मैं कई बार, वो कहते हैं कि महाप्रभु पुणे आए थे, महाप्रभु जेजुर आए थे, वहां पर भी उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन किया। ये सब नास्तिक लोग हैं, ये सब कर्मी लोग हैं बाहर के, ये कोई भक्त नहीं है, और ये बोलते कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए, पुणे में आए थे, जेजुरी में आए थे, वहां पे दीक्षा दिए कुछ लोगों को। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र सब जगह प्रचारित किया, लेकिन जैसे कविराज गोस्वामी वृंदावनदास ठाकुर, वैसे ही तुकाराम महाराज ने कविता के लिए अपने व्याकरण के हेतु से उन्होंने शॉर्टकट में लिखा, और यही मंत्र चैतन्य उपनिषद अथर्ववेद में भी रामकृष्ण हरि ही है, इसलिए कोई अलग नहीं है, सेम है ये हरे कृष्ण।
थैंक यू ब्रजी।
और कोई प्रश्न टिप्पणी?
हरे कृष्ण। इनका और एक जिज्ञासा था कि महामंत्र जप करके कोई गोलोक वृंदावन ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा उसको गोलोक जाना चाहिए, ऐसा सवाल था ना? हाँ, तो गोलोक जाना चाहिए, तो अगर जप करेगा तो उसको गोलोक जाना चाहिए। तो महाप्रभु के कई सारे भक्त थे, तो सभी का अपना अपना भाव था, जैसे मुरारी गुप्ता तो वो भगवान राम के भक्त थे और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में भाग ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, पर हर एक भक्त के भाव के अनुसार उनका गति होता है। ऐसा है जरूरी नहीं है कि जब हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं वो गोलोक ही जाएंगे, अपने अपने आराध्य देव के पास जाएंगे। और मेरे ख्याल से वृंदावन दास ठाकुर ने पूरा महामंत्र दिया है ना, चैतन्य भागवत में है, जब वो चैतन्य चरितामृत में भी हरे कृष्णा है वर्ड, पूरा मंत्र नहीं है, हरे कृष्णा है, और चैतन्य भागवत में पूरा महामंत्र है तपन मिश्रा से जब मिलते हैं।
तो ऐसे आचार्य लोग जब टीका करते हैं फिर वो उस पर पूरा महामंत्र वर्णन करते हैं, तो बाकी बाद में जो आचार्य है उसको टीका किए तो महामंत्र का वर्णन दिए।
और एक महाप्रभु के पार्षद हैं वासुदेव घोष, जो हम गाते हैं जय जय जगन्नाथ शचिर नंदन, तो उसमें वर्णन करते हैं हरे कृष्ण नाम गौर करेला प्रचार, जैसे प्रभु जी का शॉर्टकट में बोलते हैं। तो
जैसा कि इन्होंने कहा कि गोलोक वृंदावन जाने के बाद अभी चैतन्य महाप्रभु को सब अवतार सार शिरोमणि क्यों कहते हैं, क्योंकि वो केवल एकमात्र ऐसे भगवान है जिनके कृपा से गोलोक प्रेम धन वो सभी जीवों को प्राप्त होता है। अगर कोई जीवात्मा वैकुंठ से गोलोक जाना चाहता है, कोई भक्त वैकुंठ से गोलोक जाना चाहता है तो वो जा नहीं सकता, नॉट अलाउड। इसका प्रमाण है श्री लक्ष्मी देवी, उसको जाना था गोलोक वृंदावन की रासलीला में, लेकिन कृष्ण बोले आप गोपियों का भाव धारण करो, गोबर गाय की सेवा करो, तो जा नहीं पाए। अगर वैकुंठ की महारानी जा नहीं सकते तो वैकुंठवासी कैसे जाएंगे, तो ये अलाउड नहीं है। जो जिस रस में उसी में संतुष्ट रहता है, अगर किसी को जाने की इच्छा भी है तो उनको ब्रजवासियों को अनुगमन करना पड़ेगा, लेकिन वो ब्रजवासियों का कृष्ण भगवान एडवर्टाइज करके चले गए, हले एडवर्टाइज किए लेकिन प्रवेश नहीं दिए, वो प्रवेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने। हनुमान जी को जाना था उनको मुरारी गुप्ता बना दिया, खुद व्यासदेव को जाना था उनको वृंदावन दास ठाकुर बना दिया, शुक्लाम्र ब्रह्मचारी, ये सारे अवतार, इवन महाविष्णु आए थे उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए अद्वैत आचार्य के रूप में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है सब अवतार सार शिरोमणि अनार्पित चरिम चिरा, जो किसी ने नहीं दिया वो गोलोक वृंदावन का प्रेम, गोपियों का प्रेम चैतन्य महाप्रभु फ्रीली बांटे, वैकुंठ वासियों को भी, बद्ध जीवों को भी, जगाई मधाई को भी, और सभी भक्तों को। ये केवल चैतन्य महाप्रभु की लीला में ही संभव है और किधर भी संभव नहीं है।
लेकिन बृहद भागवतामृत में जो गोप कुमार वो तो वैकुंठ होके जाते हैं गोलोक वृंदावन,
जाते हैं ना वो सब घूम के जाते, फिर बाद में वो गोपियों के पास आते थे तभी संतुष्ट हो जाते वो।
तो जैसे आप बोले कि वैकुंठ से कोई नहीं जा सकता, तो फिर वो
उनको उसमें भाग लेना है, उनको उसका आस्वादन करना है, समझना है।
लक्ष्मी जी फिर क्यों नहीं जाए, वो भी चाह रहे थे उसमें,
वो भाव नहीं छोड़ रहे थे ना अपना, मैं तो हूँ महारानी वैकुंठ।
अच्छा, वो ऐश्वर्य भाव में थे, वो
भाव नहीं, भाव महत्वपूर्ण है।
थैंक यू प्रभुजी,
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रीमद्भागवतम की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।